તારીખ 17/2/1986 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 170.
आचार्य समय सार में ऐसा कहते हैं, यही कुनकुंदाचार्य की रचना है कि जिसमें रागादिक भाव जीव के नहीं है, ये गुदगल के परिणाम है, ये प्रभाव है, ऐसा कहने में आया। ऐसा क्यों कहा, उसका समाधान चलता है। शुद्ध निश्चय निश्चय रागादिक जीव के नहीं, शुद्ध निश्चय निश्चय जीव का शुद्ध स्वभाव रूप शुद्ध स्वरूप देखने में आवे तो इस शुद्ध स्वरूप में इन काल में भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल में रागादिक का प्रवेश नहीं, रागादिक का स्पर्श भी नहीं। जीव का त्रैकालिक स्वरूप ऐसा है, स्वभाव है, उसमें रागादि कभी होते नहीं। अगर कभी कभी भी रागादि इसमें होवे रूप होने से वो सर्वकालिक त्रिकालिक रागादि भी त्रिकालिक हो जावे। फिर ये स्वभाव प्रकट होवे और सिद्ध पद विद्राग पद होवे शुद्ध पद होवे तो आत्मा का मोक्ष होवे, ऐसा कभी बन सके। इसलिए ये शुद्ध निश्चय निश्चय कहा गया है समय सार में, और व्यवहार निश्चय या पर्यायार्थिक निश्चय या अशुद्ध निश्चय निश्चय कहा गया है प्रवचन सार में। दोनों नय की विविक्षा अलग अलग है, एक ही विविक्षा से तो नहीं बात बताई। जिस अपेक्षा से अपने पिता का अपन पुत्र है, उसी अपेक्षा से अपना पुत्र के साथ संबंध नहीं रहता। माँ अपना पुत्र से अपना पिता है, और पिता पुत्र दोनों एक साथ भी है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति से अपेक्षा है। एक व्यक्ति से ये अपेक्षा बन सकती नहीं। ऐसे जीव का शुद्ध स्वभाव देखने का जिसका प्रयोजन है उसको शुद्ध नहीं कही। शुद्ध श्रुत ज्ञान का जो अंश नए है वो ज्ञानांश है, ज्ञानांश है। श्रुत ज्ञान का जो अंश अपने शुद्ध स्वभाव को विषय करता है उसको शुद्ध निश्चय नहीं कहते। उसमें रागादि इन काल में नहीं है, इसलिए ये पर है। ये समय सार की विविक्षा का समाधान दिया, इसलिए उसको पर कहें। और ये भाव कर्म है, फिर भी ये भाव कर्म है, जीव के भाव है, जीव के भाव रूप कार्य है और उनके नाश से मोक्ष होता है, इनके नाश से मोक्ष होता है। भाव कर्म का अभाव होते ही मोक्ष होता है, तो उनका नाश होता है फिर भी जीव का नाश नहीं होता है। भाव कर्म का नाश होता है फिर भी जीव का नाश नहीं होता है, इसलिए सिद्ध होता है कि ये जीव का मूल तत्व नहीं है। जीव का यदि ये मूल स्वरूप होता तो उनका नाश से जीव का भी नाश हो जाता है, लेकिन भाव कर्म का नाश से जीव का अस्तित्व वैसा का वैसा ही बना रहता है, अनंत गुण संपन्न। तो उससे ये सिद्ध होता है कि भाव कर्म है जीव का मूल स्वरूप नहीं है। औपाधिक भाव है, यानी जीव की अवस्था में उत्पन्न हुआ एक रोग है, राग है सो रोग है। रोग का नाश होता है या रोग नाश करने लायक भी होता है, रोग का पालन करे, रोग का पोषण करे, ये अज्ञान है, उसमें कोई ज्ञान नहीं। जैसे कोई सूजन आता है, दुबले मनुष्य को सूजन आवे और कुछ अच्छा दिखे इसका मुंह, पहले तो ये दुबले पतले इतना अच्छा नहीं दिखता था, अब तो सूजन आने से अच्छा दिखता है, इसका रूप निखरता है। ऐसा कोई मान के अगर सूजन को पोषण देवे तो मर जाए। तो ऐसे राग है सो रोग है, कितना ही सुंदर लगे अच्छा लगे लेकिन वो अज्ञान से अच्छा लगता है, ये नाश करने लायक है। जो भी अरियंत हुए, जो भी सिद्ध हुए, जिन जिन आत्माओं ने संसार से छुटकारा पाया उन सभी ने राग मेट के छुटकारा पाया। इसलिए पर है तो छूटता है, अगर ये जीव का स्वस्वरूप है तो नहीं छूटता, लेकिन पर है तो छूटता है। पर छूटता है इसलिए उसको पर कहते हैं, सो न्याय की बात है, इसमें कोई अन्याय नहीं है। जब ये जीव रागादि को अपना नहीं माने, जब लग वो अपना मानता है तब तक तो उसको भावबंध पद्धति रहती है, और जब ये रागादि को अपना नहीं मानेगा तब भावबंध की पद्धति मिटेगी। भाव का नया भाव का बंध होना कब होगा कि रागादि को अपना नहीं मानने पर। जहां तक रागादि को अपना मानना होगा तब तक नया आयुष का बंद होगा, नया भाव को नया देह को धारण करना पड़ेगा। क्यों कि ये शक्ति मिथ्यात्व में है। रागादि को अपना मानना ऐसा जो मिथ्यात्व, उसमें अनंत भाव करने की शक्ति है। क्रमशः एक एक भाव होता है लेकिन अनंत भाव करने की शक्ति। भगवान तो शास्त्र में ये कहते हैं कि मिथ्यात्व में अनंत भाव होने का बीज पड़ा है, अनंत निबोध के भाव होने का बीज पड़ा है, क्योंकि इंद्रिय दो इंद्रिय जो है, दो इंद्रिय से लेकर जितने भी प्राणी हैं वो तो 2000 सागर से ज्यादा संसार में जी रहे हैं उत्कृष्ट। इसके पहले भी निबोध में जीव चला जाता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर की स्थिति है त्रस की, फिर जीव निबोध में ही रहता है अनंत काल। तो ये निबोध के जो अनंत भव होते हैं अनंत काल तक, निबोध में ही जन्मना, निबोध में मरना, इसका कारण मिथ्यात्व है। कैंसर से एक मरण होता है, मिथ्यात्व से अनंत अनंत भयंकर है। अध्यात्म की ऐसी भयंकरता देख देखकर जिनागम में इस पर ही ज्यादा से ज्यादा कोई बात आई है तो इस पर आई है। विशेषकर जो बात आई है कि संसारी प्राणी मिथ्यात्म के कारण संसार में भटकते हैं, परिभ्रमण करते हैं, इसको छुड़ाने के लिए सबसे ज्यादा बात आई है, क्योंकि इसकी आवश्यकता विशेष है। इसमें अनंत जन्म मरण के बीच पड़ा है, इसको छुड़ाने के लिए बात आई है। जो गुरुदेव ने भी 45 साल तक यही एक विषय, एकमात्र यही विषय एजेंडा पर रख के सारे प्रवचन किए। और सारा समय सार ग्रंथ यही एक विषय का, खुद भगवान की रचना है। कहते हैं कि जहां तक रागादि को अपना नहीं माने तब भव, जब नहीं मानेगा तब भवबंध बुद्धि मिटेगी। इसके पहला भवबंध का अभाव नहीं होगा। फिर ये राग किसी भी स्तर का हो, किसी भी कोटि का हो, लेकिन राग है सो राग ही है। राग है वो शुद्ध वितराग भाव नहीं है, यानी राग है उसमें राग का सद्भाव है, वितरागता में राग का अभाव है, दोनों परस्पर विरुद्ध है। इसलिए और ऐसे रागादि को छोड़कर शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसे स्वरूप जानकर ग्रहण करो, यही मोक्ष का मूल है, यही मोक्ष का मूल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय, मोक्ष पाने का इलाज कोई है तो तीन काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक मात्र मोक्ष का इलाज है, और कोई मोक्ष का इलाज नहीं है। भगवान उमा स्वामी ने अपने तत्वार्थ सूत्र में पहला ही यही सूत्र, प्रथम अधिकार का प्रथम सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस मोक्ष मार्ग से जो च्युत हुए हैं, पहले तो श्रद्धांश है कि मोक्ष मार्ग कोई दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा जिसकी समझ में आया, जिसकी श्रद्धान में आया, उसको मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कहने में आता है। और बुद्धिपूर्वक जो शिवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी अन्य परिणाम को मोक्ष का कारण माने या मोक्ष का मार्ग माने, उसी को सीधा ही ग्रहित मिथ्या पर लागू हो जाता है, सीधा ही लागू हो जाता है। देखिए जितने अन्य मत है उसको अपन ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, और अन्य मत को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, तो उसमें ये तत्व नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। ये सत्वार सूत्र का ये सूत्र श्वेतांबर आमनाई में मान्य किया गया है, सारा ग्रंथ मानते हैं, उमा स्वामी का ये सत्वार सूत्र स्वीकार करते हैं, फिर भी इनके जो धर्माचरण है उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकरण आउट हो गया। राय ने तो टोडरमल जी साहब ने उसको कह दिया, ये जैन का नाम रखते हुए भी अन्य मत समान होने से हम इसका प्रकरण अन्य मत के प्रकरण में लिखते हैं, श्वेतांबर का प्रकरण अन्य मत में लिखते। टिप्पणी का सवाल नहीं है, लेकिन अपने को भले ही दिगंबर आमनाई का स्वीकार किया हो, फिर भी अगर हम किसी भी प्रकार के राग को ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कुछ भी अंश मानेगा मानेंगे तो हम भी अन्य मत की तरह जैन के लिबास में अजैन हो जाएंगे, जैन के लिबास में अजैन। ये बहुत भयंकर चीज है, इसलिए कुंतुन भगवान ने कहा अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव जिसके संधान में है, चाहे आगम धर है, सब आगम को रखता है, फिर भी वो बिल्कुल ही मोक्ष मार्ग में आया
नहीं,
वो आत्मा को जानता ही नहीं। राग के अभाव स्वभाव जिसमें है, ऐसा जो शुद्ध निश्चय नहीं का विषय भूत आत्मा है, उसको वो नहीं जानता। और उसको ये नहीं जानता हुआ संसार में परिभ्रमण करेगा ही करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यहाँ दीपचंद जी कहते हैं कि ये रागादि को अपना नहीं माने तब भाव बंध पद्धति मिटेगी, इसलिए पर ऐसे रागादि को छोड़कर शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध श्रद्धान वितरागी स्वभाव का श्रद्धान वितरागी स्वभाव का स्वसंवेदन अभेद ज्ञान और वितरागी वितराग स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिर होना लीन होना, ऐसा जो आचरण उसको ग्रहण करो उसको प्राप्त करो, यही मोक्ष का मूल है। जघन्य अंश से ये प्रथम चतुर्थ गुण स्थान में चालू होता है, इसलिए यहाँ मोक्ष का मूल कहने में आया है, यही मोक्ष का मूल है। परिणाम जिस तरफ ढले वैसे होते हैं, ये प्रवचन सार का विषय लिया यहाँ से कि परिणाम जिस ओर ढले शुभ संयोग के प्रति ढलता है, देव गुरु शास्त्र का संयोग होता है, उस तरफ परिणाम ढलता है, परिणाम में शुभ भाव होता है। अशुभ प्रकार के पंचेंद्रिय विषय है उस तरफ परिणाम ढलता है, अशुभ परिणाम हो जाता है, और अपना शुद्धात्मा के प्रति परिणाम ढलता है तो परिणाम शुद्ध होता है। परिणाम का ऐसा धर्म है कि जिसका वो अवलंबन लेवे तदाकार हो जाना उसका धर्म है, ये पर्याय का एक कैरेक्टर है, पर्याय का एक धर्म है कि वो ऐसा ही होता है। इसलिए ऐसा परिणाम का धर्म जानकर पर और से निज परिणाम को पर और से खिसकर छोड़कर पर तरफ से परिणाम को छोड़कर निज परम निज परिणाम को स्वरूप में लगाओ, निज स्वरूप में परिणाम को लगा दो, अनंत गुण का धनी भगवान स्वरूप परमात्म तत्व स्वयं अंदर में सीध समान सदापद मेरो, ऐसा ही परमात्म तत्व विराजमान है, सारे के सारे परमात्मा की मूर्ति अंदर में विराजमान है, ये सर्वोत्कृष्ट पद है। उसको छोड़कर अन्य विषय कौन से उत्कृष्ट है कि जिसमें तुम परिणाम लगाते हो, आगे खुद ने प्रश्न किया है दीपचंद जी ने, ये सर्वोत्कृष्ट पद है, उसको छोड़कर तुम अन्य अन्य विषय के प्रति क्यों परिणाम लगाते हो, ये क्या इससे उत्कृष्ट है क्या? वहां तो ध्यान का बात किया है कि जीव को आर्त ध्यान रहता है, धर्म ध्यान तो स्वरूप आश्रित होता है, उसको चारित्र कहते हैं, लेकिन जो आर्त ध्यान है अन्य विषय के प्रति, राग का ध्यान है, राग का विषय प्रति का एकाग्रता है, वो तो आर्त ध्यान है, सभी जीवों को चालू रहता है। वहां ऐसा प्रश्न क्या है कि तुम क्यों अन्य पदार्थ को ध्याता है, सर्वोत्कृष्ट ऐसा निजात्म पद को छोड़कर अनुत्कृष्ट ऐसे अन्य पद को तुम क्यों ध्याता है, तो उसका ध्यान करता है, क्या रखा है इसमें, ऐसा करके प्रश्न किया है। यह मोक्ष का मूल है, परिणाम तो जिस तरफ ढलेगा वैसा ही होगा, इसलिए परिणाम की ऐसी स्थिति को देखकर पर और से परिणाम को छोड़कर अपने में, अपने स्वरूप में, निस्वरूप में परिणाम को लगा दो। उत्पाद वेद हो षड्गुण वृद्धि हानि रूप अर्थ क्रिया कारक परिणाम से साधने में आता है। क्या कहते हैं, ये द्रव्यानुयोग का विषय है। उत्पाद वेद हो पदार्थ में होता है, ये द्रव्यानुयोग का विषय है। पदार्थ में छो पदार्थ में एक अगुरु लघु नाम का गुण है, शक्ति है, त्रिकालिक शक्ति है, उसका जो परिणमन है वो षडगुण वृत्ति हानि रूप है। ये परिणमन केवल ज्ञान गोचर है, छदमस्त को ये ज्ञान गोचर होता नहीं। लेकिन इसका मतलब इतना ही है, इसका प्रयोजन इतना ही है कि अर्थ क्रिया मैंने प्रयोजन भूत क्रिया जो साधने में आती है वो परिणाम से साधने में आती है, और परिणाम षडगुण हानि वृत्ति रूप होता है और उत्पाद विद्रोह रूप होता है। क्या मतलब है कि कोई जीव कितना भी जड़ पदार्थ का आश्रय करता है, जड़ पदार्थ का रूप रस गंध वर्ण शब्द का आश्रय करके इतना परिणाम को मलिन करता है, अशुद्ध करता है, इतना अशुद्ध करता है, इतना अशुद्ध करता है कि इसकी सर्व शक्तियां हैं तो वहां लगकर इतनी परिणाम में हानि होती है कि उसका ज्ञान आवृत हो जाता है, सभी शक्तियों का उसका जो परिणमन में है वो आवृत हो जाती है, सभी शक्ति परिणाम में आवृत हो जाती है और निगोद में जीव चला जाता है। फिर भी षडगुण हानि वृद्धि ऐसी है कि वो जड़ नहीं हो सकता। हानि 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 अनंत गुण हानि होते हुए वहां अनंत गुण हानि हो गई, और अनंत गुण हानि होते हुए भी जीव अपना स्वरूप का त्याग नहीं कर सकता और त्याग करके जड़ रूप नहीं हो जाता। कितना ही जड़ में रुचि किया, अनंत गुण रुचि किया और उसको आत्मसात भाव में बना लिया, फिर भी शक्ति की हानि होगी अनंत गुण, फिर भी वो जड़ नहीं हो जाएगा। ऐसे वृद्धि होकर सिद्ध हो जाता है तो अनंत गुण शक्ति का विकास हो गया परिणमन में, केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, प्रमाण हो गया, वीर्य आदि अनंत गुण खुले हो गए, परिपूर्ण खुले हो गए, फिर भी वो अपने स्वभाव की मर्यादा में, परिपूर्णता भी जितना स्वभाव है इतनी, उसमें भी जीव अपना स्वरूप का त्याग कर कुछ दूसरा हो जाए ऐसा कभी बनता है, ये इनकी मर्यादा है। और वो उत्पाद में ध्रुव है और ये षडगुण हानि वृद्धि रूप है, और बाकी के जो छह भेद हैं असंख्य गुण संख्या गुण इस बीच में आ जाते हैं वृद्धि हानि। ये उत्कृष्ट समस्त दृष्टांत इसका सिद्ध पद का है जीव के हिसाब से, और इस साइड में वो निगोद पद का है। वो परिणाम से साधने में आता है, कार्य तो परिणाम से साधा जाता है, इसलिए परिणाम में विवेक करके परिणाम कहाँ अपना लगे इसे अपना प्रयोजन सिद्धि करना, प्रयोजन को साध लेना, यही शेष है। परिणाम विषयक ऐसा विज्ञान को जानकर अपने परिणाम में अपना प्रयोजन की सिद्धि कैसे होवे यही समझ करके सही स्थान में अपना परिणाम को लगाना, गलत स्थान में अपने परिणाम को नहीं लगाना, यही उपदेश है। समग्र परिणाम, एक गुण के परिणाम नहीं, जीव का परिणाम मतलब जीव के समस्त गुण के समग्र परिणाम को स्वरूप में लगाना है। अपवापत्थसन मूल में अगर स्वरूप का श्रद्धान होगा, दंशन मूलो धम्मो, अगर स्वरूप का श्रद्धान होगा मूल में, ये दंशन को मूल कहा, तो ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएगा और आचरण स्वरूप स्थिरता आचरण भी हो जाएगा, क्योंकि सर्वगुणान सम्यक्त्व होने से एक गुण सम्यक होने में सर्वगुण ऑटोमेटिक सम्यक होते हैं। लगाओ तो आदेशात्मक वचन प्रयोग, आदेशात्मक वचन प्रयोग है। जब श्रद्धान होती है तब ज्ञान होता है, तब चारित्र होता है, होता है उसको लगाओ ऐसा कहने में आता है। फिर भी कर्तृत्व भाव से ये होता नहीं, ऐसा आदेश और उपदेशात्मक जो भाषा होती है उसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में उसको इंपरेटिव स्पीच कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में इंपरेटिव स्पीच। जहाँ आज्ञार्थ हो और उपदेशात्मक हो वहाँ ऐसा ही वचन प्रयोग होता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, अस्ति और नास्ति, विधि और निषेध, उसी प्रकार से कहा जाता है। फिर भी ये ध्यान में रखने लायक बात है कि कर्तृत्व बुद्धि से स्वयं के परिणाम का भी कार्य नहीं हो पाता। ये मूल का सिद्धांत है, परिणाम का कर्तृत्व ये मिथ्यात्व है, उसको पर्याय दृष्टि कहते हैं। प्रवचन सार में पर्याय मुंडा पर समया ऐसा कहा, पर्याय मुंडा पर समया। तो इसलिए ये तो मूल की बात कभी छोड़नी नहीं है, तो परिणाम का कर्तृत्व हमें करे, ये हमको करना ही नहीं है। और वो इसलिए परिणाम का कर्तृत्व का निषेध किया गया, इसलिए उसको मिथ्यात्व कहा गया कि ये तो सहज होते ही रहते हैं। आप कहेंगे कि परिणाम करे तब तो था ही नहीं, तो हमारा ये तर्क है कि आप कर दो परिणमन को बंद, एक समय के लिए तो बंद करो, ज्यादा काल नहीं कहते, एक समय के लिए परिणमन बंद कर दो। छह द्रव्य में से एक भी द्रव्य का परिणाम परिणमन होना बंद होगा ही नहीं। लोग अहम भाव करते हैं, हमने ये बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ये मंदिर हमने बनाया, नया बनाने कहाँ, नया मंदिर बनाया, अच्छा उसका पुराना कौन बनाएगा उसको? नए मंदिर की नई अवस्था को पुरानी अवस्था को कौन बनाएगा? 10 20 25 साल के बाद कहेंगे कि ये मंदिर 25 साल पुराना हो गया, हो गया, हो गया का मतलब क्या? परिणाम तो होती ही होता ही रहता है। खाते हैं, इच्छा पूर्वक आहार करते हैं तो लोग कहते हैं हमने खाया, हमारी इच्छा है। लेकिन ये खुराक को सप्त धातु में कितने परमाणु कहाँ बांटना, कोई इच्छा पूर्वक हो सकता है क्या? ये परमाणु पेट में जाके स्वयं ही क्रिया करता है, स्वयं करता है या जीव कराता है उसको, स्वयं ही परिणाम रूप है। जीव की इच्छा कामयाब नहीं होती, इतना ये बनो, इतना लोग बनो, इतना हड्डी बनो, इतना वो कामयाब नहीं होता। और कौन करता है इच्छा, कैसे करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन परिणमनशील पदार्थ होने से उसका सभी जीवों का, सभी परमाणुओं का, और अपने अनुभव से अपन भी समझ सकते हैं कि परिणमन चालू ही चालू रहता है, उसको एक समय के लिए बंद नहीं कर सकते। और कितने स्पीड में ये परिणमन चालू है सभी पदार्थों के, कि एक सेकंड में असंख्य बार, कितने लाख करोड़ अरब नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात बार परिणमन होता है, पर्याय से पर्यायांतर होना एक सेकंड में असंख्य बार है। और छद्मस्थ जीव का उपयोग असंख्य समय के एक परिणाम को कर सकता है, एक एक समय के परिणाम को छद्मस्थ का जीव अपने ज्ञान में ज्ञान गोचर नहीं कर सकता है। अब असंख्य परिणाम एक साथ नजर में आता है तो इस समय का परिणाम को तुम पलटेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, कैसे पकड़ोगे? ये चला जाएगा जब तो तुमको पता होगा कि मुझे राग हुआ, मुझे क्रोध हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, छुपा हुआ, ये हुआ, तो बाद में भविष्य में होता है। तो जो स्वयं होता है उसको करना एक मिथ्या भाव है, जैसे उसको मिटाना मिथ्या भाव है। जो स्वयं हो रहा है उसको मिटा नहीं सकते, ये मिटाने का भाव अगर मिथ्यात्व है तो करने का भी मिथ्यात्व ही है। न्याय की बात हुई कि नहीं हुई? कि अगर उसको मिटाना एक मिथ्या भाव है तो उसको करना भी मिथ्या भाव है।
स्वयं
हो रहा है उसको क्या करे? तो फिर प्रश्न ये खड़ा होगा कि हमें पुरुषार्थ करना कि नहीं, हमें मत करो ऐसा करो, पर पदार्थ में परिणाम मत लगाओ, उसको परिणाम तो पदार्थ में परिणाम लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुझे सुख नहीं, तुझे दुख है और सुख के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो हम कहते हैं कि परिणाम अगर निज सुखात्मक पदार्थ में लगता है तो सुख का अनुभव होता है, पर पदार्थ में परिणाम लगता है तो आर्त ध्यान ये ज्ञान मात्र से ही तेरे परिणाम की दिशा बदलेगी। परिणाम की दिशा ज्ञान से श्रद्धान से बदल जाती है, बदलनी पड़ती नहीं है, बदल जाती है। ये जीव का स्वभाव है कि जहाँ उसको नुकसान मालूम पड़ता है वो बचने के लिए स्वयं कोशिश कर लेता है। जैसे शरीर को अपना माना है तो कहीं भी शरीर का घात होने का प्रसंग आएगा तो विचार करने का भी अवसर नहीं रहेगा, लेकिन सावधानी हो ही जाएगी कि बचा लो। इस जीव के स्वभाव में एक ऐसा सावधानी का स्वभाव है, जहाँ उसको नुकसान होता है वहां से वो बचने की कोशिश करता है, और जहाँ उसको लाभ दिखता है वहां परिणाम दौड़ने लग जाता है। जैसे पंचेंद्रिय विषय में सुख माना है अनादि से, तो धार्मिक ग्रंथ में हम समझते हैं कि ये तो आत्मा के पाप परिणाम है और इसका फल अच्छा नहीं है, इससे रोग होगा, इससे दारिद्र होगा, इससे कुगति होगी, इससे ये होगा ये होगा, फिर भी अपना परिणाम नहीं छूटेगा वहां से। क्यों पंचेंद्रिय विषय से फिर भी परिणाम को छूटना क्यों नहीं होता? कई लोग तो सभी विषयों का त्याग कर चले जाते हैं, घर संसार कारोबार छोड़ के, फिर भी इनके परिणाम नहीं छूटते। जंगल में जाते और घर याद आता है, ऐसा क्यों? कि उसमें सुख बुद्धि जब तक रही है वहां तक परिणाम छूटेगा नहीं। भले ही उसमें सुख नहीं है फिर भी सुख का निश्चय कर लिया है, ये निश्चित हो गई है कि यहां सुख है, तब तक परिणाम लगे ही रहे, चालू ही रहेगा उस वक्त। इसलिए स्वाध्याय आदि के माध्यम से अगर जीव को अपना सुख, अनंत सुख भरा हुआ अपना स्वरूप की पहचान होवे, निर्णय होवे, पहचान होवे, तो परिणाम यहाँ लगने लग जाएंगे, उधर से छूटने लग जाएंगे, उधर से ऑटोमेटिक लगने हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा, कर्तृत्व बुद्धि करना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। इसलिए बार बार यही श्री गुरु ने उपदेश दिया कि अपने स्वरूप की पहचान करो। अपना स्वरूप को जिसने पहचाना, उसके परिणाम के समस्त गुण के परिणाम की दिशा बदल कर अपने आप में निमग्न होने का एक बिल्कुल नया जोर पैदा हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, पैदा हो ही जाएगा। जिस परिणाम को जगत की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने पुराणों में दृष्टांत है कि अंतकृत केवली होते हैं। मैंने ऐसे मुनि हैं जो मुनि अवस्था में ध्यान में इतने संलग्न है कि उनको कोलों में पी ले जाए, उसको पकड़ के माथा डाले कोलों में और घाणी में उसको पी ले। देव उस उपसर्ग करते हैं, उसको आकाश में ले जाके पटकते हैं। ऐसे ऐसे प्रकार के उपसर्ग आते हैं तो उसके परिणाम को, स्वरूप में लगे हुए परिणाम को छुड़वा सकते हैं क्या? इसी कारण से क्या मुनिराज के परिणाम छूट जाते हैं क्या? उसको जंगल में वाघ सिंह खाते तो उसका परिणाम क्या छूट जाता है क्या? तो इतने कड़े उपसर्ग के बावजूद भी इनके परिणाम अगर स्वरूप से नहीं छूटते हैं तो क्या चीज है ये? जबरदस्त, ये संशोधन का विषय हो जाता है। ऐसी कौन सी एक जबरदस्त चीज है भीतर में कि जिसमें परिणाम लगे हुए छूटते नहीं और छुटाने के लिए जगत में किसी की ताकत भी नहीं लगती इसमें? ये कौन सी ताकत है? ऐसा सहज होता है, उसको करना नहीं पड़ता है, सहज ही स्थिति में वो रह जाते हैं। उसको छुड़ाने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जैसे परवश रूप से परिणाम पर विषय में लग जाते हैं सुख बुद्धि के कारण से, सुख के निर्णय के कारण से, वैसे ही सुख का निर्णय जिसका बदल गया उसके परिणाम की परिस्थिति बदल जाएगी। क्रमशः ऐसे परिणाम हो जाएंगे कि दुनिया की, जगत की कोई प्रकार की परिस्थिति उस परिणाम को बदलने में समर्थ नहीं रहेगी। इसको अर्थ क्रिया कारक और प्रयोजन क्रिया का करने वाला कहा है और वो परिणाम से सदा जाता है। इसलिए परिणाम के विज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसका उत्पादित द्रव्यत्व और उसका अर्थकारक क्रियाकारकपणा, जिसकी शक्ति है, जिसका गुरु लघुत्व या षडगुण हनुमानी वृद्धि रूप को परिणाम से साधने में आता है, उसको जानकर परिणाम की दिशा में उन्मुख बदल कर सन्मुखता हो जाए, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। ये ज्ञान का, श्रद्धा का प्रयोजन है इसमें। अब देव अधिकार लिखते हैं दीपचंद जी। यहां से देव तत्व को बताते हैं। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो तो रहो तुरई मोह की जेल। बनारसी दास जी का नाटक संविसार का 12वां पद है। मोह की जेल तोड़ करके तुम संकित रूप गहो अपने गुण करो शुद्ध अनुभव को खेल। शुद्ध अनुभव का, स्वानुभव का परिणमन करके सम्यकत्व को ग्रहण करो और मोह को तोड़ दो। खुदगल पिंड भाव रागादिक इनसो नहीं तुम्हारा मेल। तुम्हारा स्वभाव से ये रागादिक भाव और खुदगल पिंड प्रकृतियां, द्रव कर्म, बाहर के संयोग, शरीर आदि कोई मेल खाता नहीं है। ये जड़ प्रकट, ये प्रकट जड़ है, तुम गुप्त, तुम तो चेतन हो। जैसे पानी और तेल जुदा होता है वैसे बिल्कुल जुदा का जुदा है। पानी भी लिक्विड है, तेल भी लिक्विड है, फिर भी एक दूसरे में मिलते नहीं। वैसे ही रागादिक जीव के भाव होते हुए भी जीव के स्वभाव साथ उसका कभी मिलना हुआ, मिलने का बनता नहीं, मिलावट नहीं हो सकती, इतना उसका अर्थ है संक्षेप में। देव अधिकार इसलिए लिखते हैं क्योंकि देव से परम मंगल रूप निजानुभव पाते हैं, देव में भी संसारी जीव को इंद्रिय ज्ञान गोचर अर्यंत परमात्मा ही ज्ञान गोचर होते हैं, इंद्रिय ज्ञान में सिद्ध परमात्मा ज्ञान गोचर होते नहीं, इसलिए यहाँ प्रमुखतया अर्यंत देव की चर्चा इस अधिकार में दीपचंद जी ने की है। देव तो दोनों है, अर्यंत भी देव है और सिद्ध परमात्मा भी देव है, क्योंकि देव से परम मंगल रूप निजानुभव पाते हैं। देव मैंने अर्यंत देव, अर्यंत देव से परम मंगल रूप निजानुभव पाते हैं, इसलिए देव उपकारी है। क्या कहते हैं कि ये धर्म है वो निजानुभव रूप है, स्वानुभव रूप है। ये धर्म का मूल कौन है कि सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत देव धर्म का मूल है। श्रीमद राजचंद्र जी इस विषय में दो वचन बहुत अच्छे लिखे हैं कि एक तो धर्म का मूल सर्वज्ञ है और धर्म का निरूपण, तत्व का निरूपण सर्वज्ञता से करना, तत्व का निरूपण धर्म का निरूपण सर्वज्ञता से करना, मैंने सर्वज्ञता को स्थापित करके नहीं लेकिन स्थापित करके फिर धर्म का निरूपण करना, क्योंकि धर्म का मूल सर्वज्ञ है। धर्म किसने प्रकाशित किया? निजानुभव ऐसा होता है, ऐसा कहने वाला सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ से ही धर्म का निरूपण हुआ है। इसलिए परम मंगल रूप निजानुभव, चार गति से छुड़ाने वाला परिणाम, जन्म मरण को छुड़ाने वाला परिणाम जो निजानुभव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निजानुभव है, ये परम मंगल रूप परिणाम है, पवित्र परिणाम है, जीव का उद्धार करने वाला परिणाम है, सर्व प्रकार के दुख का मिटाने वाला ये परिणाम है। और ये सर्वज्ञ भगवान ने इसका प्रकाश किया दिव्य धनी में, इसलिए देव उपकारी है। कितना उपकार है देव का, कोई इसकी सीमा नहीं है, इतना उपकार है, असीम उपकार है, क्योंकि हित भी यही असीम होता है, अनंत दुख मिटता है, अनंत निज सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति बताने वाले, ऐसा उपदेश देने वाले देव का उपकार कितना है। जिसका असीम उपकार है, जिसके प्रति उपयोग जाते हुए बहुमान हुए बिना रहता नहीं, ऐसा निर्दोष परमात्मा जो बन गए, जो हुए हैं सर्वज्ञ, उनका परम आदर्श होना, ये कोई कहने की चीज है क्या? उसका अनादर तो कतई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो स्वप्न में भी उचित नहीं है। तो इसका परम आदर होना, उसको उसकी भक्ति कहने में आती है। क्योंकि देव से परम मंगल रूप निजानुभव प्राप्त करते हैं, इसलिए देव उपकारी है, यानी देव अनंत उपकारी है। देव परमात्मा है, देव है सो परमात्मा है। मैंने ये स्वर्ग के देवों की कोई बात चलती नहीं, सारी देवगति की ये बात नहीं है, देव मैंने देवगति की ये बात नहीं है। चारों गति से भिन्न ऐसी जो पंचम गति को जो प्राप्त हुए, जो अरिहंत हुए, उसको यहाँ परमात्मा कहते हैं, उसको देव कहते हैं। ये अरिहंत परमात्मा साकार है, शरीर युक्त है और सिद्ध निराकार है। ये अरिहंत परमात्मा जिसको सदैव मुक्ति, जो सदैव मुक्त दशा में विराजमान है, देह होने पर भी मुक्त दशा में विराजमान है, इसलिए वो संसारी छद्मस्त प्राणियों को भी इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान गोचर हो सकते हैं, और सिद्ध परमात्मा को देह नहीं होते हुए वो इंद्रिय ज्ञान के विषय रूप नहीं बनते, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। निराकार का मतलब ये नहीं कि इस आत्मा के कोई क्षेत्र का आकार नहीं होता, ऐसा नहीं है। सभी सिद्ध परमात्मा को चरम शरीर, जो चरम शरीर है, करीब करीब इतना ही उनका मनुष्याकार होता है, और वो दो ही अवस्था में होता है, एक पद्मासन के और एक खड़गासन के। क्यों? कि अरिहंत भी दो ही अवस्था में पाए जाते हैं, एक खड़गासन में और एक पद्मासन में। शरीर की कोई तीसरी अवस्था में अरिहंत होते नहीं, और जब ये शरीर भी छूट जाता है आयुष्य कर्म पूरा होने से, तब इसी अवस्था में आकार उसी आत्मा का रह जाता है, तो सिद्धालय में शादी अंत काल तक अपना क्षेत्र का आकार में कोई फेरफार होता नहीं। आकार, आकार मैंने एरिया, एरिया होना, क्षेत्रफल होना, कि आकाश के प्रदेश को, प्रदेश में कितने प्रदेश में वो रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है जैसे अन्य मति कहते हैं कि वो सर्वव्यापक हो जाता है, मुक्ति होने से वो सर्वव्यापक हो गया, ऐसा होता नहीं। ज्ञान सर्वव्यापक है, सर्व को जानता है, इसलिए सर्वव्यापक उपचार है कहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को छोड़कर ज्ञान की पर्याय भी कहीं बाहर जाती नहीं है। उसमें क्या बाधा है, होने में क्या बाधा है? एक अपने वो बनाता ना मूर्तियाँ, इससे बनाते, वो डाई बनाते, पहले मूर्ति की डाई बना ले, और डाई को निकाल देवे तो मूर्ति रह जाती है, जिस प्रकार की डाई है वैसा आकार रह जाते हैं। तो ये तो शरीर तो एक डाई है, डाई छूट गई, आत्मा वैसा कर रही, शरीर में शरीर आकार अभी है कि नहीं है, तो ये डाई छूट गई, ये पुद्गल की डाई छूट गई, और चैतन्य मूर्ति वैसे के वैसे रह गई, तो उसमें क्या तकलीफ, क्या है, क्या बाधा है, कोई आपत्ति नहीं है। सिद्ध निराकार है, चरम शरीर से किंचित न्यून आकार है, इसलिए उनको साकार भी कहते हैं, सिद्ध भगवान को निराकार भी कहते हैं, और उनके आकार होने से उसको साकार भी कहते हैं। निराकार इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान में उसका आकार भाषित नहीं होता, इसलिए उनको निराकार कहते हैं इस अपेक्षा से। पर उनका स्पेसिफिक आकार होने से, खास आकार होने से उसको साकार भी कहते हैं। निराकार कहने का कोई, एकांत निराकार कहने का कोई कारण नहीं है, साकार भी कहते हैं। अब इनकी चर्चा सिद्ध परमात्मा की छोड़ दिया, क्योंकि वहां देव अधिकार में मुख्य बात तो अरिहंत देव की लेनी है। अरिहंत को अघाती कर्म रहे हैं, इसलिए बाह्य विवेक्षा में चार गुण व्यक्त हुआ नहीं हुआ है। अरिहंत भगवान को अघाती कर्म रहे हैं, अघाती मैंने आयुष, नाम, गोत्र और वेदनी, ऐसे चार रहे हैं, इसलिए बाह्य विवक्षा में चार गुण व्यक्त नहीं हुए हैं। बाह्य विवक्षा में लिखने की अध्यात्म पद्धति है ना, इसलिए, क्योंकि अंतर्ज्ञान में तो सब है, व्यक्त ही व्यक्त है, चारों गुण अंतर्ज्ञान में तो व्यक्त है, तो उसमें तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन बाहर में नहीं व्यक्त हुए हैं, चारों की बात करेंगे। अरिहंत को अघाती कर्म रहे हैं, इसलिए बाह्य विवक्षा में मैंने बाहर से देखने वाले को या बाहर से उसको ऐसा दिखाई जाता है कि उसको चार गुण व्यक्त नहीं हुए, जैसे सिद्ध परमात्मा को बाहर में भी व्यक्त हो गया वैसा नहीं हुआ है। ज्ञान में तो समस्त व्यक्त ही हुआ है, ज्ञान में व्यक्त है, केवल ज्ञान है, उसमें क्या क्या चीज नहीं जानी जाती। वो अपना अव्यापादत्व को भी जानता है और अपने आयुष रहित ऐसा भी जानता है। क्या अरिहंत परमात्मा ऐसा जानता है कि मेरा ये भव है ऐसा जानता है? सम्यक दृष्टि भी नहीं जानता, सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं भव रहित हूँ, मेरे भव नहीं। ये जो नाटक है भव का, थोड़े दिन की बात है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी कोई कायमी चीज नहीं है। नाटक करने वाला देखता है कि राजा हुआ हूँ, ये दो घंटे की बात है, क्या फिर भी अभिनय करने की भूल में तो नहीं
है।
भूल में मूल स्वरूप जैसा है वैसा है, उसमें आठों गुण व्यक्त ही है। नियम सारे गाथा है कि जैसे सिद्ध परमात्माओं को आठों गुण व्यक्त है, वैसे ही सभी जीवों को जो भव में लीन है, अभी भव में रुल रहे हैं, उसको भी एक नहीं से, किसी एक नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से, वो आठों गुण उनको भी है। जैसे वो आठ गुण से संयुक्त है, जैसे सिद्ध परमात्मा आठ गुण से संयुक्त है, वैसे ये संसारी जीव भी आठ गुण से संयुक्त है। तो जो अरिहंत परमात्मा हुए, उनके चार तो गए अशुद्ध नहीं से भी, तो ये अशुद्ध नहीं का विषय बाहर का है, तो बाहर में चार नहीं गए, लेकिन अंदर में तो सब गए। वो कहाँ मानता है, कहाँ स्वीकार करता है अपने ज्ञान में सब व्यक्त हुआ है, यही कहने में आता है। किस तरह नाम कर्म मनुष्य गति रूप है, इसलिए सूक्ष्म है, बाहर में व्यक्त नहीं है। नाम कर्म है वो मनुष्य गति है, इसलिए सूक्ष्म है। गति नाम कर्म है, वो गति की जो अवस्था है वो सूक्ष्म है, वो बाहर में व्यक्त नहीं है। इतनी सूक्ष्म है कि वो बाहर में इतनी व्यक्त नहीं होती, वो केवल ज्ञानी को। मनुष्य नाम गति कर्म है ना, वहाँ चालू है, फिर भी बाहर में वो सूक्ष्म है, बाहर में इतनी व्यक्त नहीं है, फिर भी केवल ज्ञान में व्यक्त है। मुझे गति नाम कर्म जो है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, अंतर्वाय शुद्ध परमात्मा हो गया, वितराग हो गया, उसमें गति नाम कर्म का अस्तित्व है नहीं, वो बाहर है, मेरे में नहीं है, ऐसा ज्ञान में व्यक्त है, बाहर में व्यक्त नहीं है। लोग तो जानते हैं कि भगवान को जी शरीर का बंधन है, जहाँ तक आयुष रहेगा भगवान भी वहाँ रहेंगे, शरीर के साथ जुड़े हुए संयोग में रहेंगे, बाहर में ये व्यक्त स्थिति नहीं बनती। लेकिन केवल ज्ञान में तो कोई शरीर से लगाव नहीं रहा। यही कारण है कि शरीर का लगाव नहीं रहने से उनको आहार विहार निहार निद्रा आदि नहीं होते, जो शरीर के धर्म है। ये देव तत्व में भूल के आश्रता बराबर है, टिप्पणी के बाद तत्व को समझने का विषय है। तो शरीर होते हुए भी शरीर का लगाव, कोई शरीर के धर्म को प्रवृत्ति रूप नहीं होते। आहार करने का, पानी पीने का, तुषा लगने का, निहार होने का, कोई प्रकार अरिहंत को नहीं बनता, जो लोगों ने स्थापित कर दिया। भगवान आहार लेते हैं, भगवान को महावीर भगवान को ये रोग हुआ, उनको ये टट्टी लग गई, ये दवाई मंगाई, ये दवाई खाया, ये बात कभी। तो वो 2400 तीर्थंकर को मानते हुए भी और तीर्थंकर को अरिहंत नाम देते हुए भी इनके स्वरूप से अनभिज्ञ है, अज्ञान है, तो उसमें देवतत्व का निषेध हो जाता है, मानते हुए भी निषेध हो जाता है। तो मानते हैं ये जैन परमेश्वर है, लेकिन जैन परमेश्वर को अगर जैन के परमेश्वर के स्वरूप में नहीं माना गया तो ये देव तत्व की भूल है। जिसकी देव तत्व की भूल है, इसके तत्व ज्ञान का विषय कितना भी तगड़ा दिखे, लेकिन इस तत्व ज्ञान में कहीं भी एक बात भी मानने योग्य होती नहीं, श्रद्धा करने योग्य होती नहीं, अनुसरण करने योग्य होती नहीं, सम्मत करने योग्य होती नहीं। क्या कहा फिर से? कि जिसकी देव तत्व में भूल हो उसकी एक बात भी सही नहीं। सही नहीं इसलिए श्रद्धा कर्तव्य नहीं, उसका संज्ञान में सम्मत कर्तव्य नहीं और उसको अनुसरण आचरण में अनुसरण कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वहां ग्रहित मिथ्यात्व पैदा हो गया है। बुद्धिपूर्वक सर्वज्ञ परमात्मा का अन्यथा स्वरूप लगा दिया तो उनमें ग्रहित मिथ्यात्व की गड़बड़ी होगी। तो ग्रहित मिथ्यात्म को न श्रद्धा करने लायक है, न ज्ञान से सम्मत करने लायक है, न आचरण में अनुसरण करने लायक है। लेकिन इतने तो आगम रचे हैं, 45 तो आगम है, वो है वो है वो है, ये सब गड़बड़ी है, इसमें कोई गड़बड़ कोई बात नहीं। यहाँ से उठा ली हो, ये तो सर्वमतों ने उठाई है, ये तो सांख्य ने भी उठाई है। शुद्ध निश्चय नहीं का विषय तो सांख्य ने उठाया है और पर्यायार्थी का विषय बौद्धों ने उठाया है। 363 पाखंड कहां से निकले कि भगवान ऋषभदेव स्वामी की जो वाणी चालू हुई आदि तीर्थ करके एक साथ 363 पाखंड हो गए। क्या भगवान की वाणी से पाखंड होता है? भी जो योग्यता थी वो प्रकाशित हो गई। किसी ने एक नहीं को यहाँ से एकांत पकड़ा, कोई ने यहाँ से एकांत पकड़ा, किसी ने एक नहीं का यहाँ से एकांत पकड़ा। तो सभी अन्य मत में जैन मत की कुछ न कुछ बात तो आएगी ही आएगी, लेकिन किसको गौण करना, किसको मुख्य करना, किससे प्रयोजन सिद्ध होना, ऐसी जो जिनागम में रही हुई एक वाक्यता है जिसमें प्रयोजन की सिद्धि होती है, जिसमें दोष का सर्वनाश होकर परिपूर्ण पवित्रता की प्राप्ति होती है, ऐसी विधि जहाँ नहीं रहती वहाँ मार्ग नहीं रहता, वहाँ उपाय नहीं रहता, वहाँ मिथ्यात्व हो जाता। तो ये पूरे की पूरी 100% गड़बड़ी है, एक बात भी 1% भी उसको देने लायक नहीं रहता। ऐसे यहाँ देव तत्व का विषय बहुत सुंदर चला है संक्षेप में, लेकिन मूल मूल प्रयोजन बात इसमें आ जाती है।